आत्मानुशासन लेक्चर नंबर 8। ओम नमः सिद्धेश। ओम नमः सिद्धेश। ओम नमः सिद्धेश। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो वच्छायाणं। नमो लोए सौवसाहूणं। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय रदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। पूज्य श्री गुणभद्र आचार्य के द्वारा रचित यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है और इस पर क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी सहजानंद जी के लेक्चर्स है, प्रवचन। उसमें अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 37 पर, 37। ये हमने पहला एक पैराग्राफ और वो बाद में वो नया पैराग्राफ भी पढ़ा था। नीचे से जो दूसरा पैराग्राफ है उसको पढ़ेंगे हम। संतोषोत्पादक ज्ञान, यानी संतोष का उत्पादक, संतोष कहो आनंद कहो उसका उत्पन्न करने वाला ज्ञान। भैया एक बात और भी ध्यान में लाए, संतोष नाम का परिणमन स्वयं में स्वयं का है। हमें तो लगता है नहीं, हमने ये खाया पिया इसलिए हमें संतोष मिला। कहते संतोष नाम का परिणाम, संतोष यानी वो आनंद, संतोष स्वयं में स्वयं का है। संतोष का स्रोत स्वयं से ही निकलता है, स्रोत यानी उसका ओरिजिन, कहां से वो धारा निकली है। जब यह जीव सर्व से विविक्त, विविक्त यानी विभक्त, जुदा ज्ञानानंद स्वरूप मात्र निज तत्व की सुध लेता है, सुध लेता है उसका, उसे भान होता है, उसके विश्वास हो जाता है, उस समय उसको जानता है, तब ममता और अहंकार का बोझ खत्म हो जाता है। क्या कहा? जब यह जीव सर्व से विभक्त, विविक्त ज्ञानानंद स्वरूप मात्र निज तत्व की सुध लेता है। वो मात्र कहने से ना उसमें गेय घुस जा रहे हैं और ना ही उसमें गेय के तरफ होने वाले राग द्वेष के परिणाम है, बस उस संबंधी ज्ञान उसका है, वो तो ज्ञान का अपना परिणाम है। इसलिए ज्ञान मात्र कहने से ज्ञान मात्र में स्वभाव भी आ गया और केवल मात्र ज्ञान का परिणाम है वो आया उसमें। बर संबंधी हो स्व संबंधी हो सारा कुछ ज्ञान जो है पर्याय तो आ गई उसके अंदर ज्ञान की, पर ये विभाव रूप परिणाम उसमें नहीं लेना और ना ही परद्रव्य उसमें ले लेना। इसलिए कहते ज्ञानानंद स्वरूप मात्र निज तत्व की सुध लेता है तब ममता अहंकार का बोझ खत्म हो जाता है। क्योंकि ममत्व परिणाम अहंकार परिणाम वो कोई राग द्वेष के परिणाम सब तो जुदे रख दिए ना, उससे तो भेद ज्ञान कर लिया। उस स्थिति में यह आनंद स्वयं ही अपने आप में बरस पड़ता है। देखो कैसे शब्द आते हैं, बरस पड़ता है, उछल जाता है, जैसे अंदर से फुहारा आता है, ऐसे अलग अलग उसका वर्णन करने में आता है। तो यह आनंद स्वयं ही अपने आप में बरस पड़ता है। आनंद का देने वाला लोक में कोई दूसरा नहीं है, प्रत्येक वस्तु है, है कहने से उसकी अस्थि सिद्ध की, उसका स्वभाव है, उसका परिणमन है, है पर दे यानी प्रत्येक की सत्ता है, सत्ता है तो उसका अपना स्वभाव भी है और वहां उसका हर एक का परिणमन भी है। हर समय उसका परिणमन हर वस्तु का चल रहा है और वो अपने से हो रहा है, कोई दूसरा करेगा तो होगा ऐसी बात है नहीं। वस्तु का जो स्वरूप है उसके अनुकूल ज्ञान होना लाभदायक है, यानी जैसी वस्तु है, कौन सी वस्तु जो कोई हो, स्व हो या पर हो, जैसा उसका स्वरूप है तदनुकूल उसके अनुसार ज्ञान होना, जो जैसी है उसको वैसा जानना वो लाभदायक है। कोई पुरुष सिद्धांत बनाए वस्तुओं के अपनी इच्छा के अनुकूल परिणमन करने का। क्या कहते हैं, कोई पुरुष क्या समझता है कि अपनी वस्तु अपने इच्छा के अनुसार परिणमित हो जाए, ऐसा वो सिद्धांत बनाता है, ऐसा नियम बनाता है, ऐसा रूल बनाता है। तो कहते यह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु तो अपने स्वभाव के अनुसार परिणमित होती है। करना कुछ चाहता है और होता कुछ है, क्योंकि वस्तुएं इसके इच्छा के अधीन तो है ही नहीं है। जब हम द्रव्य कहते हैं तो उसकी अनादि अनंत पर्याय सुनिश्चित है प्रत्येक द्रव्य की, क्योंकि वो द्रव्य का स्वभाव तो त्रिकाली तो है ही है, परंतु किस समय में किस पर्याय रूप से परिणमित होना, ये योग्यता वाला भी धर्म उसी में विद्यमान है। ये योग्यता से बात कर भी, फिर वो अशोक जी का फोन आया तो बोरा नाते पुते योग्यता उसके ऊपर लिखो लिखो करना कुछ चाहता है होता कुछ है, इस प्रकार उसमें आकुलताएं ही रहती है, क्योंकि उसके इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हो रहा तो उसकी तो आकुलता बनी रहती है। कोई मनुष्य जो पदार्थ जैसा है उसके अनुकूल अपनी धारणा बनाए, धारणा ने उसकी मान्यता, यहाँ धारणा ने वो धारणा वाला ज्ञान वो यहाँ नहीं लेना, हमारी उस संबंधी धारणा ने अपनी मान्यता, उसका ज्ञाता दृष्ट रहे, क्या ज्ञाता दृष्टा चाहिए, ज्ञाता दृष्टा रहे, उसका परिणमन उसमें ही है यो निरखे, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का परिणमन उसमें उसके अपने कारण होता है, और अपना परिणमन स्वभाव कर्तव्य क्या है वह अपने में देखे तो उसे शांति मिल सकती है। हमने रोटी बनाना चालू किया और वो गोल नहीं बनी, ऑस्ट्रेलिया सिलोन कुछ हो गया, नहीं तो उसका परिणमन उसमें है, उसके कारण है, और मेरा स्वभाव तो जानने का है, वो मेरे में है, तो हम तो चाहते वो गोल बने और वो बनी टेढ़ी। यह कहते ना, पदार्थ जैसा है उसके अनुकूल अपनी, यहाँ से उसका परिणमन उसमें ही है यो निरखे, यानी होते हुए परिणमन में, पदार्थों के परिणमन होते हैं सारे, और होते हुए कार्यों में वो उसका कार्य है, मेरा उसमें क्या कार्य है, मेरा उसमें क्या योगदान है, तो यहाँ तो जानने का कार्य चल रहा है, इस तरह उसको स्वीकार होना चाहिए। तो शांति मिल सकती है। नीचे का परेड, अपनी संभाल में सफलता पर दृष्टांत। जैसे कोई दो पुरुष किसी पहाड़ पर यथेष्ट विहार करना चाहते हैं, यथेष्ट यानी जैसे उन इच्छा अनुसार, मन मर्जी के अनुसार। एक के मन में आया, इस पहाड़ पर कांटे बहुत है, इस समस्त पहाड़ पर चमड़ा बिछा दे, फिर मनमाना खूब इस पहाड़ पर घूमेंगे। दूसरे पुरुष ने यह सोचा कि मैं अपने पैरों में आधी पिंडली तक बहुत मजबूत चमड़े के जूते पहन लूं, फिर इस पहाड़ पर मनमाना घूमेंगे। तब यह बताओ कि सफल कौन होगा, जो अपने पैरों में जूते पहनकर घूमेगा। सारे पहाड़ पर चमड़ा बिछाने की धारणा बनाने वाला सफल न हो सकेगा। ऐसे ही दुख है किस बात का इस श्लोक में, यानी कौन सी बात का दुख हो रहा है जीवों को, कि परपदार्थ का परिणमन अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहते हैं और वह होता नहीं है तो दुखी होते हैं। चीज एक है और चाहने वाले दसों है। यानी दुनिया में जो चीजें है, धन संपत्ति है, अनेक जन की, जो हर एक उसको चाहता है, तो चाहने वाले तो अनेक है। कल्पना सबकी जुदा है, तो किस किस की सिद्धि होगी। यह सिद्धि का मार्ग नहीं है, किंतु समस्त लोग को स्वतंत्र जान जाए। 38 पेज कि यह भी एक जीव है, इसमें भी वासना, संस्कार, धारणा, ज्ञान, इच्छा, कषाय सबके अपने अपने माफिक भरी पड़ा है। क्या कहता है, यानी सभी जो अन्य जो जीव है उसमें क्या क्या बातें, वासना उनकी जो इच्छाएं हैं, संस्कार यानी उनको जो पहले से जो कुछ बातें उन्होंने जानी है मानी है और वो धारा रूप से चलता है उसको संस्कार कहते हैं। जैसे मिथ्यात्व का भी हो सकता है, पहले पढ़ा हुआ उसका भी संस्कार चला रहता है, धारणाएं यहाँ पर उसकी मान्यता भी ले सकते हैं, उस संबंधी उसका ज्ञान क्या है, इच्छाएं क्या है, कषाय क्या है, सो अपने अपने जुदे जुदे वहां भरे पड़े हैं। 38 पेज पर ऊपर से पांचवी लाइन हमने पढ़ी तो अपने अपने माफिक भरी पड़ा है, भरा पड़ा है चाहिए ना। इसका परिणमन इसी के अनुसार हो रहा है, बस मेरा काम जानने देखने का है, इससे आगे मेरा अधिकार नहीं है कि मैं किसी वस्तु को अपनाऊं, बस इस ज्ञान प्रकाश में संतोष मिलेगा, यानी ज्ञाता दृष्टा रहने में। हम कहेंगे अपने बच्चे तो उससे मनी तो हमें तो समझाने के भाव आएगी ना, आएगी ना, ना कौन कहता है, तो वो भावों के भी हम ज्ञाता दृष्टा है, इसको लेना है। लोग क्या कहते कि कुछ नहीं करना है, राग द्वेष नहीं करना है, करने धरने की बात ही नहीं, वो हम उसके कर्ता नहीं है। जैसे अन्य चीजें पर वस्तु जो पर है उस संबंधी ज्ञान हो रहा है, इतना ही हमारे में उठने वाले राग द्वेष पर है और उस संबंधी हमें ज्ञान हो रहा है। हम तो वो राग पर को तो परिणमाना चाहते ही चाहते है, वो अपने राग द्वेष को भी हम पलटाना चाहते हैं। उससे अगर नाता छोड़ जाए और उसके भी ज्ञाता दृष्टा बने तो जो नए पर्याय है उसमें उस टाइप के राग द्वेष भी नहीं उत्पन्न हो। चोर का स्वरूप, नया पैराग्राफ मिला कि नहीं? हाँ। लोक व्यवहार में कहते हैं जो दूसरे की चीज को अपनाता है वह चोर है, यानी दूसरे की चीज भले आपके पास पड़ी रहे कोई बात नहीं, पर अगर आपने उसकी अपनी मानी तो चोर कहलाता है। हमें हमेशा वो कर्म की बातें समझाते हैं, 8 कर्मों के उदय में जो जो बातें हो रही है, शरीर है, अन्य जो संयोग है, सब आपके साथ तो है, उसका अपना मत मानो, अपना मानते वो चोर कहलाएंगे। ये शरीर है बस, यह मैं हूँ, ये मेरा है, माने तो ये चोर कहलाएंगे। धन संपत्ति मिली है कर्म के उदय में, वो कर्म की है, मानो उसको, आपकी कोई नहीं, वो आपके साथ से कोई निकाल के नहीं ले जाने वाला, क्योंकि कर्म का उदय उसको संभालेगा, परंतु वो मेरी है, मैंने इतना कमाया तो फिर चोर सब में लगा लो। शरीर की रचना है, नाम कर्म के उदय में हुई है, यह मैं हूं मान लिया तो चोर हो गए। अरे अपना तो ज्ञान दर्शन पूरा स्वभाव भाव वहां पर है, वो अपना मानो ना, ये कर्म की उदय की बात है, क्यों अपना मान रहे? इसलिए चोर कहलाते हैं, तो चोरी की तो उसका सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तो लोक व्यवहार में कहते हैं कि जो दूसरे की चीज को अपनाता है वह चोर है। चोर में और क्या होता है, दूसरे के घर में रखी हुई चीज को अभी यह मान रहा है यह इसकी है, और उसे आंख चुरा कर चुरा ले, अपने घर में रख ले, अर्थात दूसरे की चीज को अपनी बना लेना, यही चोरी है। वहां व्यवहार में यह देखते हैं कि दूसरे की चीज हड़प लेना तो चोरी है, पर भीतर में मर्म यह है, उसे मान लिया कि यह तो चीज मेरी हो गई थी दूसरे की, इसी का नाम चोरी है। यानी मन में मन मान लेना ये मेरी है, दूसरे की होने पर भी हाँ ये मेरी है, हाँ वो चोरी है। आत्मा को छोड़कर बाकी समस्त पदार्थ पर है, वो आत्मा में कहाँ घुस गए है, तो जुदे ही, शरीर तक जुदा है, पराये है। जिस मकान में रहते वो मकान भी पर है, पराया है। जिस देह में रहते हैं यह भी पर है, पराया है। पराया है इसलिए कहते पराया नहीं, दूसरे का पुद्गल का है, वो तो मेरा थोड़ा ही, उसमें कुछ नहीं मेरा लेना देना, निमित्त रूप से भी कर्म का निमित्त है उसमें, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। जिन परिजनों के बीच में रहते हैं, जिन परिजनों के बीच में रहते हैं वे भी पर है, पराये है। इन परवस्तुओं को हम अपना रहे हैं या नहीं, इन्हें अपने से विचार करो, कि हम इनको अपना मान रहे कि नहीं मान रहे, अपना रहे कि नहीं रहे। केवल कथन की बात नहीं है, व्यावहारिक कथन में होगा, परंतु मान्यता में क्या पड़ा है अपने, ये देखना है। क्योंकि इसमें तो हमारे नाम की रजिस्ट्री है ना, तो व्यवहार में तो ये तो कहेंगे भी ऐसा ही, चलो हमारे घर चलिए, आप आए हो बम्बे में तो हमारे घर पधारना, तो क्या घर तुम्हारा हो गया? कथन की बात नहीं है, मान्यता की बात चल रही। क्या कहा यहाँ पर, इन पर वस्तुओं को हम अपना रहे हैं या नहीं, यह देह ही मैं हूं, मान्यता में क्या है? ये अपने से जुदापन भासित नहीं हो रहा है, अरे मैं उस रूप, यानी अपने को फील कैसा हो रहा है कि इस रूप में हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं छोटिंगना हूँ, मैं जाड़ा हूँ, मैं पतला हूँ, ये चलता है ना बात, कहना ये देखो, मैं मोटा हूँ, दुबला हूँ, मैं थक गया हूँ, मुझ पर बड़ा बोझ है, ये सारी देह की बातें ही तो अपनाई जा रही है, मुझे इतना काम, यानी वो तो दिन भर तो यही मैं बकरी जैसा इसी में देह में ही मैं कर रहा हूँ। यानी मान्यता में कहो, अपने खुद के विचारों में क्या इससे भिन्नता का भान हो रहा है कि नहीं, अपने को पूछना है। एक बोली में हमने नहीं ये देह में से जुड़ा है, बार बार ऐसा बोलने से थोड़ा ही वो जुदा हो जाता है, कोई ऐसे भी ये मेरी साथ में जो देह है उसके लिए ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, अपने को क्या फील हो रहा है वो उसकी बात, केवल वो दूसरे को दिखाने के लिए बोलने में परिवर्तन किया, उससे कुछ नहीं होगा। कोई हम लोग फिर कैसा बोलना, हमने बोलना बोलने और सुधारने की कोई जरूरत नहीं, जो बोल रहे वैसा बोलो, मगर मान्यता क्या है वो देखो। ये तो हम शास्त्र पढ़कर बोल ही सुधारना चाहते हैं, हाँ जो अपनी नहीं है, बराबर। क्योंकि तो ये सारी देह की बातें ही तो अपनाई जा रही है, पर वस्तुओं को जो अपनाता है उसका नाम अभी क्या रखा था, चोर। यह सारा जगत परमार्थता चोर ही तो है। मुफ्त संयोग और मुफ्त वियोग, देहवत, ये यहाँ कॉमा क्यों दिया, देह के समान चाहिए और वहां कॉमा भी नहीं चाहिए और वत के बाद वो आधा तो चाहिए। देहवत मकान को, धन को, परिजन को अपना रहे हैं, जैसे अपने यहाँ देह का उदाहरण दिया वैसे उसके समान हम और किस किस को अपना रहे, अपना मान रहे, मकान को, धन को, परिजन को, परिजन अपने परिवार के लोग या आजू बाजू के जो अपने, पर चीज को बरजोरी अपना मान रहे हैं। पर वस्तु तो सदा नोटिस दे रही है कि हम तुम्हारे नहीं है, पर ये संसारी प्राणी उन पर चीजों को जबरदस्ती अपनाते हैं, अपने को अधिकारी मानते हैं। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, मान न मान, ये सारा मेरा है, ऐसा मानते हैं। जो कुछ जगत में स्थिति प्राप्त हुई है यह सब वर्तमान भाव दृष्टि से देखो तो मुफ्त प्राप्त हुई है, क्योंकि वो अपने सहज, उनके अपने कारण वो संयोग में आके रहे हैं। आपने उसको जबरदस्ती लाया यहाँ ठहराया ऐसी बात तो है ही नहीं है। तो जो कुछ स्थिति प्राप्त हुई है वो तो मुफ्त हुई है। आत्मा तो ज्ञान मात्र है, वह केवल भाव बनाता है। इस भाव के जरिए से तो कोई चीज नहीं प्राप्त हुई है, क्योंकि हमने देखा अपनी इच्छा के कारण कुछ अपने अधीन तो है ही नहीं है। इसने भाव बनाए बहुत, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसके कारण थोड़ी मिला है उसको, तो उसके भाव के कारण तो नहीं मिले। द्रव्य पुण्य का उदय था, समागम जुट गया है। द्रव्य पुण्य ने वो पुण्य प्रकृतियां, आत्मा के भाव ने वर्तमान में क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया। यानी वर्तमान में जो करेगा वो तो कर्म बन देगा, उसका उदय वो बात नहीं, वर्तमान भाव के कारण उसको ये नहीं मिला, ये कहना चाहते, इसलिए मुफ्त में मिला है। ये सब समागम मुफ्त ही मिले हैं, और ऐसा ही जानो, ये मुफ्त ही बिछुड़ जाएंगे, क्योंकि समागम है तो निश्चित उसका वियोग होगा, और उसका समय कितने साथ रहने वाला है वो भी नक्की है। न कुछ उनमें मेरा पुरुषार्थ लगा और न किसी तरह ये रह सकेंगे, इस बीच में जो कुछ भी भाव बनाया, कल्पना बुरी बनाई, उसका पापबंध अलग किया, जिसका फल भोगना शेष है। क्या किया? ये मुक्त में तो मिला है, पूर्व के पुण्य के उदय से कर्म के उदय में आज मिले हैं। वर्तमान में भाव क्या किया? ये मेरे हैं, ये ने नया पाप बांधा, जिसका वो पड़ा है अभी, उसका भुगतना शेष है। कहते हैं मुफ्त संयोग और मुफ्त वियोग पर एक दृष्टांत। एक चोर था, वह राजा की घुड़शाला में पहुंचा, वहां से बहुत बढ़िया घोड़ा चुरा कर लाया। ये पहले हमने बहुत बात, ये जिस भाव में आया उस भाव में चला गया, हाथ में वो हुक्का मिला, वो बात बताई थी ना। और मेला जो पशुओं का होता है उसमें खड़ा कर दिया, पशुओं के मेले लगते, उसके जो बाजार लगते हैं। ग्राहक लोग आए, घोड़ा था मानो 400 का, लेकिन ग्राहकों से बतावे वह तिगुना दाम। ग्राहक पूछे कितने का दोगे? उत्तर देता 1200 का देंगे। अब इतने का कौन खरीदे? 10-5 ग्राहक किसी तरह से आए और पूछकर लौट गए। एक बूढ़ा चोर भी आया, जिसने अपने जीवन भर चोरी का काम किया था। पूछा कितने का दोगे? कहा 1200 का देंगे। उसकी आवाज और विराम सुनकर के पहचान गया, यह घोड़ा चोरी का है। पूछा भाई इसमें क्या गुण है? बोला अरे इसमें कला है, इसकी चाल अच्छी है। अच्छा देखे तो इसकी चाल, हाथ में लिए था एक मिट्टी का हुक्का, तो उसे पकड़ा दिया और स्वयं घोड़े पर बैठ गया, घोड़े को झट उड़ा ले गया। वह वहीं का वहीं खड़ा रह गया। बाद में पहले वाले ग्राहक आए, पूछा क्या घोड़ा बिक गया? वह बोला हाँ बिक गया। कितने में बिक गया? जितने में लाए थे उतने में बिक गया। मुनाफा कुछ नहीं मिला? हाँ मुनाफे में एक मिट्टी का हुक्का मिल गया है। यहाँ मुनाफे में इसको पाप बन गए। तो जैसे चोरी का घोड़ा चोरी में चला गया, ऐसे ही समस्त समागमों की बात है। सभी पदार्थ मुफ्त ही मिले हैं और मुफ्त ही बिछुड़ जाएंगे। मुनाफे में पाप का हुक्का ही साथ रह जाएगा। पाप का हुक्का बताए उसका। बकरी की तरह निज कार्य की धुन। जिनका मोह नहीं मिटा है वे पुरुष तत्व के स्वरूप की बात को हृदय में नहीं जोड़ सकते। यानी वो कितना भी सुन ले परंतु वो उनको अपील नहीं करता है, उनको तो गुस्सा ही नहीं उनके हृदय में, वो अन्य अन्य बातों में उनकी रुचि है। उत्तम श्रोता वही है, ये ही के ऊपर बिंदी नहीं चाहिए, वहां ही के लिए वो बिंदी लगाते, वही यानी वह ही। उत्तम श्रोता वही है जिसका चित्त ज्ञान और वैराग्य से वाष्पित है, यानी भीगा हुआ है, ज्ञान वैराग्य युक्त है। श्रोताओं को अपने हित के काम से प्रयोजन है। कुछ श्रोता शुभ लक्षण के होते हैं, कुछ अशुभ। आज शुभ लक्षण वाले श्रोता बताए जाते हैं, किस किस ढंग के श्रोता हुआ करते हैं। कुछ तो शास्त्रोपदेश की बात तो हृदय में धरकर अपना लाभ कर सकते हैं, यानी अपना लाभ करने वाले श्रोता। एक होते हैं बकरी समान। आपने बकरियों को देखा होगा, उन्हें केवल अपने काम का प्रयोजन है। जहां पत्ते मिल गए वहीं खा लिए। चाहे कोई कुछ करता हो पर उनसे उन बकरियों को कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही उत्तम श्रोताजन केवल आत्मलाभ की ही बात सुनते हैं, उन्हें अन्य बातों से प्रयोजन नहीं है। कौन संस्थान है, कैसी जगह है, कौन सा दिन है, क्या भविष्य की बात है, इत्यादि कुछ भी अन्य बातों से उन्हें प्रयोजन नहीं है। स्वहित कैसे हो, किसमें हो, इसी बात का जिन्हें ध्यान रहता है, ऐसे श्रोताओं में यह शुभ गुण होता है। यानी अपने हित से प्रयोजन है, अन्य से कुछ प्रयोजन नहीं। गौ हंस व दर्पण की तरह कुछ श्रोता। कुछ श्रोताओं को गौ सम बताया है, यानी गाय के समान। जैसे गाय खाती है घास किंतु देती है दूध, वह घास जैसी अल्प मूल्य वाली चीज खाकर बहुमूल्य वस्तु देती है, इस प्रकार कुछ श्रोता ऐसे होते हैं कि अल्प ही उपदेश सुनने से महान लाभ लूट लेते हैं। हंस की तरह कुछ श्रोता होते हैं जो वक्ता के अवगुणों को न ग्रहण कर गुण ग्रहण करते हैं। वो हंस का ये उदाहरण तो प्रसिद्ध है ना, नीर क्षीर का विवेक करते जुदा करते। जैसे हंस में यह गुण होता है कि मिले हुए दूध और पानी में वह दूध को ही ग्रहण करता है, ऐसे कुछ श्रोता वक्ता के गुण को ही ग्रहण करते हैं। यह हंस के समान हो गए। कुछ श्रोता दर्पण की तरह होते हैं, जैसे दर्पण में अपना चेहरा देख लिया, जो कुछ भी मिट्टी वगैरह लगी हो उसे हटा दिया, ऐसे कुछ श्रोता अपने अवगुणों को निरख कर वो निकाल कर उनके गुण ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तुला कसौटी के समान श्रोता योग्य हेय उपादेय में बहुत शुद्ध तोल कर सकते हैं। तोलना है उसके नापना, वजन हम करते हैं ना उसको तोलना करते, वे तुला सम है। जो भी सार तत्व हो उसे वे ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ श्रोता कसौटी सम बुद्धि से कस कर परीक्षा करके, जैसे ये सोने को कसते हैं ना वो कसौटी पत्थर पर, वो ऐसे लाइन खींचते तो वो तो पीला दिखता है, तो उससे वो तो जो है वो निर्णय करते हैं वो सोने कैसा है कितना मिक्स है उसमें, तो कहते वो बुद्धि के कसौटी पर कसते हैं, परीक्षा करके हेय को तस देते हैं और उपादेय को ग्रहण करते हैं। प्रतिभा संपन्न और सहज वैराग्य से सुवासित जो पुरुष होते हैं वे तत्व के स्वरूप को हृदय में धारण कर सकते हैं। लोक में धन कन कंचन राज सुख सब सुलभ है, यो आता है ना धन कन कंचन राज सुख सब ही, ऐसा कुछ वो तो उस 12 भावना में आता है ये वाक्य। इनमें कुछ सार नहीं है, सुलभ है नहीं वो तो, ये पुण्य के उदय में प्राप्त होते उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन ये सुलभ है। इनमें कुछ सार नहीं है, बड़े बड़े राजा हुए, अपने अपने समय में उन्होंने अपना बड़ा रौब जमाया, प्रभाव जमाया, पर आज क्या है, आज उनका कुछ नाम निशान भी नहीं है। संपत्ति में समागम में वास्तविक सुख और सार नहीं है। एक यथार्थ ज्ञान हो जाए जो कि हम आप सबके स्वाधीन है, केवल अंतरंग में विचारने भर की बात है। यानी अपने अंतरंग में ही वो तत्व विचार के द्वारा प्राप्त होने वाले बात है। यथार्थ सिद्धि हो जाए तो इस सम्यक ज्ञान के समान लोक में वैभव अन्य कुछ नहीं है। सुयोग और कर्तव्य, आज कितना सुयोग हम आपने पाया है। थावरों की योनि से निकलकर, यानी एकेंद्रियों से निकलकर, कीट पतंगों की योनि से निकलकर आज हम मनुष्य भव में आए। देव संयम धारण नहीं कर सकते, देव श्रुत केवली नहीं हो सकते। देखो वो कितने भी अंक के पाठी हो उसको श्रुत केवली नहीं कहा, देखो यहाँ लिखा ना, देव निर्वाण नहीं पा सकते। मनुष्य संयमी बन सकते हैं, श्रुत केवली हो सकते हैं, निर्वाण भी पा सकते हैं। समस्त भवों से श्रेष्ठ भव यह मनुष्य का है, लेकिन मनुष्य होकर भी वही आदत यदि बनी रही जैसे कि पशु पक्षी की योनि में रहकर किया था, तो इस मनुष्य भव के पा लेने से कुछ भी लाभ न मिल सकेगा, क्योंकि वहां पर भी खाते हैं पीते हैं सब, कषाय सब चल रहे हैं, और ऐसे मनुष्य होकर भी वही करेगा, तो मनुष्य हुआ नहीं हुआ बराबर है, ये कह रहे कल्याण का अवसर तो इस मनुष्य पर्याय से ही मिलेगा। जब तक बूढ़े भी नहीं है, कोई रोग भी नहीं है, तब तक ज्ञानार्जन करके समय का सदुपयोग करें, यही एक लाभदायक बात होगी। किंतु इस दुर्लभ मनुष्य भव को यदि विषयों के सुख में व्यर्थ के मोह में ही गंवा दिया तो कुछ भी लाभ न उठा पाया। जो चीज त्रिकाल भी अपनी नहीं हो सकती, उसे जो अपनी माने उसका सुधार न हो सकेगा। देखो, हम भी जो इम्पोर्टेंस किसको देते हैं, पहले तो स्कूल की पढ़ाई है, फिर कमाई करना है, और फिर जाके जो अपनी उम्र बहुत हो जाती है तो सोचते नहीं है अभी हमको कुछ स्वाध्याय भी करना है, धर्म की बात भी सोचनी है, करना भी है, करना है, करना करना करते करते जहाँ जब बुद्धि तेज होती है बचपन में यौवनावस्था में, तब यदि हमने इसको अच्छी तरह से धारणा में नहीं लिया है और बाद में अगर लेना चाहते हैं तो बैठा नहीं जाता है, सुना नहीं जाता है, याद नहीं रहता है, ये तो होना ही है ना। जैसे बचपन है, यौवनावस्था है, बुढ़ापना है, तो बुढ़ापना है तो उसके निमित्त रूप से वो तो बातें बुद्धि की पर असर तो होना ही है ना। यदि पहले पढ़ा हुआ होगा तो सारा रह जाएगा बुद्धि में, वही बात चलेगी मन ही मन में, भले वो बाहर से लोगों को लगता है विस्मरण हो गया, बीमारी हो गई, किसी को नहीं पहचानता है, पर उसके अंदर ही अंदर वो बात चलेगी। हमने वो कैलाश जी पंडित को भी देखा है, गए थे ना अलीगढ़ में मंगलायतन में गए थे ना, ऐसे तो किसी को पहचानते नहीं थे। वो पवन जी उनके बहुत नजदीक जाके जोर से बोलते थे, चालू करते ना पर से हट वगैरह, ऐसे उनके बहुत सारे बोलते तो एकदम शुरू होते थी लाइन पूरा फटाफट फटाफट फटाफट, है ना, उनके मन में वो वही कितनी गहराई तक पहुंचे हुई बात, क्योंकि बाहर से तो लगते किसी को पहचान नहीं रहे, ऐसे ब्लैंक लग रहे, परंतु वो उनका तो अंदर ही अंदर चल रहा है, क्योंकि पहले जो किया होगा वही तो काम आएगा। पहले कुछ नहीं किया तो ऐसी अवस्था में कुछ भी बोलो, उनको कुछ भी समझाओ, क्या फायदा है। देखो क्या कहते हैं, जब तक बूढ़े नहीं हुए, रोग नहीं हुए, तब तक समय का सदुपयोग करें, यही लाभदायक बात होगी। किंतु इस दुर्लभ मनुष्य भव को यदि विषयों के सुख में व्यर्थ के मोह में ही गंवा दिया तो कुछ भी लाभ न उठा पाया। जो चीज त्रिकाल भी अपनी नहीं हो सकती, उसे जो अपनी माने उसका सुधार न हो सकेगा। नरबल का सदुपयोग, जैसे गन्ना होता है उसके बीच के पोरों में कीड़ा लग गया हो तो वह भीतर लाल लाल हो जाता है, जो कि खाया नहीं जा सकता। आपने कभी देखा है लाल ऐसे लाइनें आती है उसके अंदर, उसी गन्ने को कोई मूर्ख चूस कर खराब कर दे तो उसने अपना भी मुंह खराब किया और गन्ना भी खराब किया। कोई विवेकी गन्ने के पोर काट कर खेत में बो दे तो उससे अनेकों गन्ने पैदा हो गए। गन्ने की जड़ तो खाई नहीं जाती, बड़ी कठोर होती है, और गन्ने का ऊपरी भाग नीरस होता है, वह भी चूसने में नहीं आता। केवल गन्ने का बीज का हिस्सा चूस सकते हैं और उसमें भी लग जाए कीड़ा तो कर्तव्य क्या है, उसे चूस कर अपना मुंह न बिगाड़े, न गन्ना बर्बाद करे, उसके पोर काट कर बो दे, फिर तो न जाने उससे कितने गन्ने पैदा होंगे। ऐसे ही यह मनुष्य जीवन है, इसमें तीन पोर है, बुढ़ापा, जवानी और बालपन। ये पोर समझते ना, ये जैसे उंगली में जो होते ना, पैर कहो पोर कहो, बुढ़ापे में तो कुछ किया नहीं जा पाता, बालपन में अज्ञान रहता है, केवल एक जवानी का समय ही ऐसा है जिसमें पुरुषार्थ करने की भी शक्ति है और ज्ञान प्रतिभा भी मिली हुई है, लेकिन उस जवानी के पोरों में लग गया विषय भोगों का कीड़ा और इसे विषय सुख में ही गंवा दे तो यह विवेक की बात नहीं है। विवेक तो यह है कि इस जवानी को सिर्फ ज्ञानार्जन में, धर्म में, तपस्या में लगावे, अर्थात बो देवे, तो इसके फल में जो शुभ भाव होगे, धर्म दृष्टि होगी, वह लाभ देगी। इस कर्तव्य को भूलकर कुमार्ग में चले तो कोई सहाय न होगा। आत्मशरण की बुद्धि 41 पेज पर आ गए भैया। यह बुद्धि तज दो कि मेरे मित्र, पुत्र, स्त्री, माता पिता, मकान, संपदा आदि मेरे शरण है, यानी मेरे लिए कार्यकारी है, कुछ तो मेरे काम आएंगे। इस भ्रम को छोड़ दो कि ये कोई मेरे शरण है, मेरे शरण है, उनसे मेरा बचाव होगा कहो, या वो मेरे अड़चन में कहो कि विपत्ति में काम आएगा, मेरी रक्षा करेगी, ऐसी बुद्धि, ऐसी मान्यता छोड़ दो, ये भ्रम है कहते हैं। आप सदाचार से रहते हैं तो आपके पुत्र, स्त्री, माँ, बाप आदि भी खबर लेंगे, खबर लेंगे ना आपकी पूछताछ करना। और आप दुराचार से रहते हैं तो कोई भी आपकी खबर न लेगा, तो शरण तो सदाचार ही हुआ। सदाचार होने से ही दूसरे लोग खबर लेते हैं, वह सदाचार क्या है, तो कहते आत्मधर्म। तो धर्म ही शरण हुआ, दूसरे लोग शरण नहीं हुए, ऐसा जानकर अपने आप की शरण में पहुंचे, तत्वज्ञान बनाए, सम्यक श्रद्धान बनाए, सम्यक ज्ञान बनाए, और वैसा ही अपना आचरण बनाए। देखो तत्वज्ञान ही शरण, कितना भी भयंकर बीमारी हो जाए, अभी मरण सम्मुख है, तो फिर तत्वज्ञान ही उसमें काम आने वाला है, क्योंकि यह जीव तो अनादि अनंत है ही, परंतु उस समय वो विचार भी नहीं सूझते जिसका अभ्यास नहीं है, वो तो हाय हुआ हाय हुआ हाय हुआ, अरे मैं मर गया भाई, मेरे मौत आ गई, मैं अभी नष्ट हो जाऊंगा, संकलेश कर करके भी मर सकता है। और जो तत्वज्ञानी है वो तो तत्वज्ञान की बात है, उसके और दृढ़ता से उस समय होगी, कुछ अपना भी काम कर लेंगे तो काम देगा, न कर सके अपना काम तो इस जीवन में भी क्लेश होगा और परभव में भी क्लेश होगा। ज्ञानी विरक्त श्रोता उपदेश ग्रहण का पात्र है। ज्ञानी और विरक्त, ज्ञान और वैराग्य साथ में लिया, उसमें किसी कुमार्ग की बात का आग्रह नहीं होता। जिसे जिद्द हो, हठ हो, वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। जिसे आत्मकल्याण की रुचि है वही उपदेश का पात्र है। ऐसे श्रोता के प्रकरण में श्रोता के लक्षण कहे हैं, जिसमें श्रोता जन अपनी ऐसी योग्यता बनाए इस ग्रंथ में जो घटनाएं आएगी उन सबको धारण कर सके। अब ये तो शुभ की बात है, हंस के समान, गौ के समान वगैरह वगैरह, बकरी के समान उन्होंने बताए, अभी जो अशुभ वृत्ति वाले हैं उसकी बात करेंगे, अपने परिणामों की, अपने जो कुछ मान के रखा है उसकी। जैसे सामने वाला उपदेश दे रहा है कि कैसे मोक्ष प्राप्त कर दिया था, तो ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ करेंगे तो पाएंगे ना, क्या करेंगे, कुछ शरीर की क्रिया करेंगे, कुछ भगवान की भक्ति करेंगे, कुछ नाम स्मरण करेंगे तो ही मोक्ष होगा ना, उससे मोक्ष होगा मानते हैं। शुभ से बंद होता है नहीं मानकर, पहले की जिद है अपनी, वो नहीं छोड़ना है उसको यानी अपनी मानी हुई बात पर ही वो अड़ग है, वो तो आगम का आधार देने पर भी वो मानने को तैयार नहीं, उसको क्या कहेंगे, वो जिद है, हटी है, यानी उसको अपनी मानी हुई बात, उसको मनमानी करनी है, उसको तो आगम से वो स्वीकार नहीं करना है, उसको कहेंगे जिद वाले, यानी जो, क्योंकि अभी तो मिथ्या दृष्टि, तो पहले का कुछ कुछ भ्रमणाएं तो है, अगर वो सही सुनकर वो विचार करता है तो भ्रमणाएं छूट जाएगी, और वो नहीं नहीं मैं मानता हूँ वही सच है, हमारे बाप दादा क्या मूर्ख थे क्या ऐसे मान्यता लगती है ना समाज में, तो ऐसी बात दिखती है। अशुभ श्रोताओं में पाषाण सम श्रोता। इस ग्रंथ में आत्मा पर अनुशासन किया है। जिस पर अनुशासन करना है वह पुरुष कैसा होना चाहिए, अर्थात उपदेश ग्रहण करने के योग्य कैसा पुरुष हो सकता है, उसका यह प्रकरण चल रहा है। कुछ ऐसे विपरीत श्रोता होते हैं जो उपदेश के योग्य नहीं है। जैसे कोई श्रोता पाषाण सम होते हैं, जैसे पाषाण में न भीतर कोमलता है न बाहर कोमलता है, उस पर कितना ही पानी डाला जाए तो पानी का प्रवेश उसके भीतर नहीं हो सकता है। ऐसे ही कोई श्रोताजन इतने विपरीत आशय वाले हो कि धर्म का उपदेश उनके हृदय में प्रवेश न कर सके तो वह श्रोता अयोग्य बताया है। कौन सा श्रोता योग्य है इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। अब शेष रहे खोटे श्रोताओं की बात कही जा रही है। भग्न घट सम श्रोता, भग्न है ना फूटा हुआ घट, तो उसमें तो कुछ पानी भर नहीं सकता है, उसमें से पानी जो आएगा तो नीचे बह जाएगा। कुछ श्रोता फूटे घड़े के समान होते हैं, जैसे फूटे घड़े में पानी भरा जाए, कुएं से खींचा जाए, ऊपर आते ही आते पानी सब कुएं में गिर जाता है, घड़े में नहीं रह पाता। ऐसे ही जिसे कहते हैं कि इस कान से सुना उस कान से निकल गया, इस प्रकार के श्रोताजन होते हैं वे उपदेश के योग्य नहीं है, अर्थात वे लाभ नहीं लूट पाते। उपदेश के योग्य नहीं, वो उपदेश उनको देना नहीं देना तो समान है। श्रोताओं में सबसे प्रमुख विशेषता बताई गई थी, इसमें मेरा क्या हित है, किसमें मेरी कुशलता है, इस बात का जो चिंतन रखता हो वही वास्तविक श्रोता हो सकता है। एक आत्मकल्याण की चाह न हो तो समस्त अवगुण उसमें आ जाते हैं। यह एक ऐसी मूल औषधि है। आत्मकल्याण की वांछा ही, वांछनीय इच्छा, सब अवगुणों को दूर कर देती है। और जैसे आत्महित हो सके उस प्रकार से प्रवृत्ति कराने लगती है, वो सहज होती है। अतः सबसे पहले हम आप में यह वांछा जगनी चाहिए कि हमारा किसमें हित है, हम उस तत्व को ढूंढें। विषयों से अतृप्ति। भैया कुछ अनुभव ने भी बताया होगा, इस जीवन में किसी भी परवस्तु से सुख नहीं मिल सकता। जैसे रोज खाते हैं फिर दूसरे दिन वैसे ही भूखे रह जाते हैं, भूख लग उठती है, वह खाया हुआ बह जाता है मानो कुछ खाया ही न हो। ऐसे ही भोग है, इन भोगों को भोगते हैं और भोगने के कुछ थोड़े समय बाद वैसे उत्सुक और प्यासे बने रहते हैं। उनसे कौन सा तत्व मिला अब तक? किसी भी परवस्तु में मेरा हित नहीं है, मेरा हित मेरे ही स्वरूप में बसा हुआ है। जो जाननहार है वही जान सकता है। अनुभव की अवक्तव्यता, अवक्तव्य ने वो कह नहीं सकते। प्रथम तो विषयों की भोगी हुई बात भी, ये विषयों के बारे में बताते हैं, जो अनुभव किया है विषय का तो उसको भी मुख से प्रकट नहीं की जा सकती है। वह अनुभव में उतर जाए यह तो संभव है, पर शब्दों द्वारा नहीं बताई जा सकती। ऐसे हम पूछते ना, वो घी का स्वाद कैसा है, हाँ अच्छा लगता है ना, हाँ। कोई बतावे कि मिश्रे का स्वाद कैसा होता है, कोई शब्द ही नहीं है कि कोई बता सके। भले ही वो अनेक युक्तियों से प्रतिपादन करे कि देखो गन्ना मीठा होता है ना, उस गन्ने का रस ही रस निकाल लीजिए, उसे गाढ़ा करके राब बना लीजिए, उस रस से भी अधिक मीठा वह राब होता है, उसका मैल छुटा कर गुड़ बना लीजिए, वो गुड़ उस राब से भी अधिक मीठा होता है, उस गुड़ का भी मैल छुटा कर शक्कर बना लीजिए, वह शक्कर उस गुड़ से भी अधिक मीठी लगती है, उस शक्कर की चाशनी करके उसका भी मैल निकाल कर विधिवत मिश्री बना ली जाए तो तुम अंदाज कर लो कि वह तो कितनी मीठी होगी। चल में उसके और आगे आगे का प्रोसेस करके इस तरह वो हम कहते गुड़ खान शक्कर और अमृत, इस तरह बातों से बहुत कुछ बता दिया, यानी शब्दों में इतना ही बता दिया, इससे मीठा है, उससे मीठा है, उससे मीठा है। लेकिन जिसने मिश्री नहीं चखी है उसके चित्त में विशद ज्ञान हो ही नहीं सकता कि मिश्री कैसी मीठी होती है। उसे बातों में समय गुजारने की अपेक्षा मिश्री की डली खिला लीजिए तो उसे खाकर वह स्वयं अनुभव कर लेगा कि मिश्री ऐसी मीठी होती है। अब ये आत्मा पर घटित करना है हमको। ज्ञानानुभूति की मात्र अनुभूति गम्यता, यानी वो अनुभव से ही जानने में आ सकते हैं। ये तो बाहरी विषय भोगों की चीज है, इंद्रियों के विषय के बारे में वो भी नहीं शब्दों में बता सकते हैं। तो यहाँ तो कहते हैं आत्म तत्व के अनुभव की बात कितने ही शब्दों में कही जाए, सामान्य परिज्ञान चाहे हो जाए, पर जिसने निर्विकल्प होकर अपने शुद्ध ज्ञान प्रकाश का अनुभव नहीं किया है उसको विशद परिज्ञान नहीं हो सकता। आत्मानुभव का विशद बोध उसके ही होगा जो परद्रव्यों को हेय भिन्न असार समझकर उनका उपयोग करना छोड़ दे और सहज विश्राम पाए। यानी बारंबार परों में वो अपना उपयोग लगा लेते हैं तो कहते उसको उसे लगाना छोड़ दे, इसको कहेंगे सहज विश्राम। उसके ही ऐसे शुद्ध ज्ञानानुभूति स्वयं होती है कि उस आनंद में तृप्त होकर वह जानता है कि आत्म तत्व कैसा है। वह भावात्मक है, ज्ञानात्मक है, यह सब विशद परिज्ञान उसके हो जाता है। यह आत्म तत्व की बात जब तक विपरीत आशय रहता है तब तक यह भली प्रकार सुनी भी नहीं जा सकती। विपरीत अभिप्राय के साथ उसका वो तो उसका रहस्य ख्याल में नहीं आ जाता, वो उल्टा उल्टा ही ग्रहण करता है। मेष सम श्रोता, ये मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी ये कुछ श्रोताओं की बात उन्होंने लिए ना पंडित जी टोडरमल जी ने, ये आत्मानुशासन की भी टीका उन्होंने की है, टोडरमल जी की टीका है पहली की हुई, अभी यहाँ तो ये सहजानंद जी ने प्रवचन दिए है। कुछ श्रोता मेंढा की तरह बताए गए हैं, मेंढा जैसे पालनहार मालिक को ही मारने लगता है, ऐसे ही विपरीत आशय वाले श्रोताजन वक्ता के दोषों को ही निरख कर दोष ख्यापन करके अथवा अन्य प्रकार वक्ता को ही मारने लगते हैं। कहीं यह वक्ता वर्णन करने लगे कि परस्त्री सेवन महान पाप है, उसके सेवन वाला नरक जाता है, तो जो परस्त्री गामी होगा वह ऐसा ख्याल बड़ी आसानी से कर सकता है। यह वक्ता मेरे को ही लक्ष्य में लेकर ऐसी गालियां देता है और वह मारने का घात करने का उद्यमी हो जाए तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। जब तक आत्मकल्याण की भावना उत्पन्न नहीं होती है तब तक श्रोता में जो गुण होने चाहिए वे प्रकट नहीं होने पाते। यानी आत्मकल्याण की भावना से ही वो उत्कृष्ट श्रोता हो सकता है। उन समस्त गुणों के विकास का मूल आत्मकल्याण की भावना है। जो हमने श्रोता के गुण देखे हैं वो तभी प्रकट हो सकते हैं जब आत्मकल्याण की भावना हो। यदि सुख विषयों में होता तो आचार्य देव विषयों के भोगने को ही धर्म बता देते, कोई कठिनाई की तो बात न थी। किंतु ये समस्त विषय कैसे है, समस्त विषय प्रथम तो पराधीन है, क्षणिक है, और फिर उनसे सुख भी नहीं आता है। केवल यह जीव कल्पना करके अपनी कल्पनाओं को विषय बनाकर सुख की कल्पना करता है, यानी वो कल्पनाओं को भोग रहा है, राग को, गुरुदेव की भाषा ने राग को भोग रहा है। ये विषय जितनी देर तक प्राप्त है उतनी देर तक भी क्लेश के कारण है। और उनके वियोग के समय भी यह बड़ा कष्ट मानता है, यानी उनको प्राप्त होने पर भी इसके क्लेश ही है, वहां से सुख की बात ही नहीं है। श्रोता का प्रकरण इस ग्रंथ में भूमिका के अंत में रखा है कि जिनको सुनना है उन्हें पहले अपनी पात्रता बनाना है, जिससे ये समस्त उपदेश टिक सके। आज के इस प्रकरण के बाद इस ग्रंथ का प्रारंभ होगा। अब हम यही रुकते हैं। जावानी के ज्ञान से